शांति। तो अभी का विषय है पाप की गठरी। आज की मुरली से लिया गया है। आज की मुरली का गीत क्या था? ले लो दुआएं माँ बाप की, तो उतर जाए सिर से गठरी पाप की। तो तीन बातें कही जाती है। एक कहा जाता है पाप की गठरी या पाप का बोझा खत्म करो, लास्ट में दे दूंगी। दूसरी बात कही जाती है इसी चीज को दूसरे शब्दों में, पुण्य की पूंजी जमा करो। और एक तीसरी बात जो होती है वो इससे भी ऊंची है, वो है पाप और पुण्य से भी परे चले जाओ। तो आज उसी को हम थोड़ा समझेंगे। तो पहले तो मैं एक कहानी बताकर कुछ स्पष्ट करना चाहूंगी। एक राज्य में एक रिवाज था, राजा की नियुक्ति हर 5 साल में की जाती थी और नियुक्त राजा 5 साल तक गद्दी संभालता था और उसके बाद वो पुराना हो जाता। और पुराना होते ही, क्योंकि सिर्फ 5 साल का रिवाज था उसका, तो 5 साल के बाद वो पुराना हो जाता और नए राजा का फिर से चुनाव होता। तो पुराने राजा को राज्य के नदी के उस पार जंगल में भेज दिया जाता था और नए राजा को गद्दी पे बिठाया जाता था। अब नियुक्ति करने की भी एक अजीब प्रथा थी कि कैसे नियुक्त करें कि राजा कौन बनेगा। 5 साल के बाद तो पुराना गया, अभी नया चाहिए, तो नए की नियुक्ति कैसे करते थे? सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते थे और हाथी के सूंड पर फूल की माला रख देते थे। अब वो हाथी जिस भी शख्स को वो माला पहनाएगा वो नया राजा बनेगा। और जो नया राजा बना तो फिर वो गद्दी पर बैठ जाता, पुराने राजा को जंगल में भेज दिया जाता। ऐसे जंगल में जहां वो डरा हुआ सहमा हुआ रहता है, क्योंकि घना जंगल है और हिंसक पशु है, और उसमें उसको छोड़ दिया जाता। पहले तो डरा सहमा रहता और फिर उन पशुओं के आक्रमण से उसका खात्मा भी हो जाता। तो ऐसे ही एक बार 5 साल बीतने पर जब नए राजा की नियुक्ति हुई तो नया राजा जो था पहले तो मन ही मन बहुत खुश हुआ था, क्योंकि राजा जब उसको मिला राज्य पर तो 5 साल उसने भी राजा ही की। और परंपरा क्या थी, 5 साल होते ही उसको उसका राजकाज पूरा हो जाएगा और राजपाट से हटा दिया जाएगा। तो सिपाही आते थे और उस पुराने राजा को, क्योंकि पुराना वाला उन 5 सालों में ऐशो आराम में इतना डूब गया होता कि अब वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन नियम था कि छोड़ना है। तो सिपाही आके जबरदस्ती उसको पकड़कर रस्सी से बांधकर घसीट घसीट कर नदी के उस पार जंगल में भेज देते थे। तो ये जो दशा होती थी, वो जो दूसरा नया राजा आया उसने सब देखा हुआ था, उसको पहले से सब कुछ मालूम था, तो इसने भी 5 साल तो राजकाज संभाला। और फिर इसका भी समय आया और परंपरा के मुताबिक इसको भी सिपाही लेने के लिए आए। लेकिन जैसे ही सिपाही इसको रस्सी से बांधने के लिए आगे बढ़े, राजा ने उसे राजाई रुहाब से रुकने का आदेश दिया। सैनिक सहम से गए। इससे पहले कि सैनिक कुछ कहे, राजा ने कहा, मैं एक राजा हूं, मैं एक राजा हूं और राजाई ठाट बाट से मैं विदाई लूंगा। सैनिक तो हक्के बक्के रह गए, कहां पहले जो राजा इतने हुए उनको हम घसीट घसीट कर छोड़कर आते थे, और ये तो इसका टाइम पूरा हो गया लेकिन इतना उसके अंदर राजाई रुहाब है, इसके अंदर कोई डर नहीं है। और फिर जैसे राजा का आदेश था, वापस उसको हाथी पर सवार, क्योंकि राजाई रुहाब से मैं विदाई लूंगा, फिर से हाथी पर बिठाकर उसको नदी के किनारे, क्योंकि नदी के उस पार भेजना है, नदी के किनारे ले गए। वहां नाव तैयार थी, जिस नाव में बिठाकर नदी पार करके उधर के जंगल में उसे भेजना था। लेकिन ये बहुत निश्चिंत और राजा ही रुहाब, कोई डर नहीं कुछ नहीं, तो नाव में बिठाया। नाविक भी हतप्रभ रह गया कि आज दिन तक जितने भी राजाओं को मैं लेके गया हूं वो कितने डरे डरे होते थे, और ये तो उसके बिल्कुल विपरीत दशा वाला है, लेकिन पूछे तो कैसे पूछे। इसलिए उसने क्या किया, जब बीच नदी तक पहुंच गया तब तो उसने हिम्मत बांधी और उसको पूछा कि राजन, आप इतने खुश दिखाई दे रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? आपको एक ऐसे जंगल में छोड़ा जाना है अभी जहां पर जंगली खूंखार जानवर है, आपको कुछ भी भय नहीं है? राजा ने मुस्कुराकर कहा, कम से कम तूने मुझे थोड़ा बहुत पहचाना। उसने कहा, नदी के उस पार जिस जंगल में राजा को भेजने की प्रथा चली आई है, उसको तो मैंने कब से साफ करवा दिया है। पहले ही दिन, जिस दिन मुझे माला पहनाई गई थी हाथी के द्वारा, मैं दिल ही दिल खुश हुआ था उसी क्षण, पर उसी दिन मैंने भविष्य का भी सोचना आरंभ कर दिया था, और इसलिए राजाई पद संभालने के पहले ही साल में मैंने क्या किया, मंत्री को भेजकर मजदूरों के जरिए जंगल की पूरी सफाई करवा दी। फिर दूसरे साल में मैंने क्या किया, मैंने राजमिस्त्री को भेजा और मेरे नए महल बनाने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, गांव वालों के लिए भी मैंने घर बनवाए। और फिर तीसरे साल मैंने क्या किया, तीसरे साल में मैंने नगर के अच्छे ज्ञानी लोगों को परिवार सहित वहां रहने के लिए भेज दिया। और चौथे साल मैंने क्या किया, काम करने वाले, कारोबार चलाने वाले लोगों को वहां भेजा और वहां कल कारखाने स्थापित करवाए ताकि उनकी रोजी रोटी का भी साधन होता रहे। और पांचवें साल पूरा नगर तैयार है। और आज जब एक राज्य मुझे विदाई देने को तैयार है, दूसरा राज्य मेरा स्वागत करने के लिए तैयार है। अभी तक के राजा रो रो कर गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगते हुए जीवन का दुनिया पर दोष मढ़ते हुए जंगल की ओर चले गए और जंगल में उनका खात्मा हो गया। लेकिन इस राजा का क्या हुआ? समझ में आ रहा है? वो पहले वाले राजाओं ने क्या किया? भविष्य का कुछ भी नहीं सोचा। वो कहते हैं मुफ्त में जब सब मिलता है, क्योंकि शर्त देखो तो क्या है, लियाकत कुछ भी नहीं है, सिर्फ हाथी जिसको माला पहना दे, वरना तो राजाई पद के लिए उतनी सारी क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है ना। पर यहां तो क्या थी क्वालिफिकेशन, बस हाथी गले में माला पहना दे। और फिर जिसको ना, वो कहते हैं जिसको ना जीवन में कुछ ना हो और सब मिल जाए, तो क्या होता है, उसकी मति भ्रमित हो जाती है। और उसी मति भ्रमित में वो ऐशो आराम में डूब जाते हैं और उसी में अपने लिए पाप की गठरी तैयार कर लेते हैं। और वही पाप की गठरी का रिजल्ट जीवन का खात्मा। और कौन सी स्थिति में? डरे डरे हतप्रभ भिक्षा मांग रहे हैं। ये है बाबा जो कहते हैं अंत मति सो गति। तो जो बाबा ने आज कहा, ले लो मां बाप की दुआएं, तो पाप की गठरी उतर जाएगी। और मां बाप माना कौन? शिव बाबा, जिसको हम पतित पावन कह के याद करते हैं। तो हमने भी बाबा की एक अव्यक्त मुरली में आया है, राजाओं ने राजाई गवाई, नेताओं ने कुर्सी गवाई, डिक्टेटर्स ने अपनी सत्ता खोई, उसका कारण क्या? उसका कारण क्या? निजी कार्य को छोड़कर ऐश आराम में डूब जाना। कोई न कोई बात को लेकर स्वयं किसी के अधीन हो जाते, अधीन हो जाते तो अधिकार छूट जाता। अधीन थोड़ी अधिकारी रह जाता है, अधिकार छूट जाता है फिर, या फिर वशीभूत हो जाते हैं तो अधिकार का मिसयूज करते हैं। तो ये अभी तक के जो राजाएं थे क्या हो गए? वशीभूत। किसमें वशीभूत हुए? इंद्रियों की लोलुपता। क्योंकि राजा ही मिल गई ना, बिना कुछ प्रयास किए, और इंद्रियां उस पर क्या हो गई? लालायित हो गई। भविष्य का कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन अगले वाले राजा ने समझदारी का काम किया, उसने पुण्य की पूंजी कमाई, न सिर्फ अपने लिए महल का निर्माण किया लेकिन गांव वालों के लिए भी सोचा। तो बाबा भी हमें यही कहते हैं, हमारे ऊपर कितने वर्षों की पाप की कटरी है, उनके पास तो 5 साल की थी। हाँ, हमारे ऊपर कितने वर्षों की गठरी है, 63 जन्मों की कटरी है। हमारी भी वैसे ही तैयार हुई है ना विक्ट्री, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, द्वापर युग से पाप का खाता चालू हो गया। क्यों चालू हुआ पाप का खाता द्वापर युग से? देह अभिमान। और देह अभिमान का दूसरा अर्थ, देह अभिमान का दूसरा अर्थ, सरल अर्थ, देह अभिमान का सरल अर्थ अपने से दूर हो जाना। सिंपल मीनिंग, जो मैं हूं उसकी विस्मृति हो गई, उसका होश गवा दिया, उसकी जागृति नहीं रह गई, उसकी स्मृति नहीं रह गई, उसके प्रति अज्ञानता। स्वयं के ज्ञान से ओझल हो गए, अज्ञानता का पर्दा चढ़ गया, ये है देह अभिमान। तो जब जब स्वयं की विस्मृति हुई है वही कारण है देह अभिमान का, और उसी देह अभिमान में फिर पाप हुए। तो सिंपल परिभाषा अगर कहें कि पाप क्या और पुण्य क्या, तो क्या कहेंगे? किसको कहेंगे पाप कर्म और किसको कहेंगे पुण्य कर्म? जो भी कर्म मैं स्वयं से दूर होकर करूंगी वो पाप, और जो भी कर्म स्वयं के नजदीक स्वयं के होश में रहकर करूंगी वो होगा पुण्य। और यही कारण है कि जब बाबा कह रहे हैं आज मुरली में कि माँ बाप की दुआएं ले लो गठरी उतर जाएगी, और माँ बाप की दुआएं कैसे मिलती है, जब माँ बाप की श्रीमत पर चलते हैं, माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं। तो इस माँ बाप की पहली श्रीमत, पहली आज्ञा क्या है? हाँ, पहला ही लेसन हमें क्या मिलता है, बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, और इसलिए हर कर्म करते समय आत्म अभिमानी स्थिति, जिसको सरल अर्थ में कहें, हर कर्म करते हुए ये स्मरती रहे। क्या स्मरती रहे? आत्मा हूं मैं, और अगर मैं आत्मा हूं तो क्या हूं? क्योंकि कहा कि स्वयं से परे होकर जो कर्म किया वो पाप, और स्वयं में स्थित होकर जो कर्म करेंगे वो पुण्य। तो स्वयं में अगर स्थित होना है, उस होश में रहना है, उस स्मृति में रहना है, तो क्या हूं मैं? सिर्फ आत्मा बोलने से काम बन जाएगा क्या? क्या हूं मैं? बोलो क्या हूं मैं? क्या कहा था? देह तो 5 फुट लंबा चौड़ा माटी का पुतला, और आत्मा क्या है? एक प्रकाश है। एक क्या है? प्रकाश है। एक अस्तित्व जो प्रकाशमान है। फिर क्या बताए आत्मा के गुण? आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप तो पीछे पहले अंतर बताया, देह जड़ है आत्मा चैतन्य है। अब चैतन्य माना क्या? चैतन्य माना ही ज्ञान स्वरूप। चैतन्य को ही तो ज्ञान होता है, जड़ को थोड़ी होता है। तो अगर मैं चैतन्य हूं, मतलब ज्ञान में होना चाहिए, मतलब मुझे सदा स्मृति रहे, मैं आत्मा ज्योति हूं। और मैं आत्मा ज्योति, फिर जो सात गुण बताते हैं, तो जब भी मैं कर्म कर रही हूं, क्या वो आत्मा के गुणों के अनुकूल स्थिति में रहकर किया मैंने, या उसके विपरीत में रहकर किया? जिसको कहते हैं ना आम भाषा में लोग, जो बाहर की दुनिया में पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सेल्फ एस्टीम, क्या क्या कोर्सेज चलाते हैं, जिसमें एक बात कहते हैं, लिव इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जीना सीखो। तो क्या मतलब होता है वर्तमान में जीना सीखो? हाँ, या कभी आप कुछ पढ़ रहे हो और आपसे कुछ पूछा जाए कि आपने क्या पढ़ा और बता नहीं पाए, कहाँ था तुम्हारा ध्यान, कहाँ था तुम्हारा ध्यान? बाहर से तो दिख रहे हो, पढ़ रहे हो, परंतु अंदर गया नहीं, मतलब ध्यान वहां नहीं था, मतलब वर्तमान में आप वहां नहीं थे। तो वर्तमान में जीने का मतलब क्या होता है? जो कुछ कर रहे हो उसी के होश में रहना, उसको कहते हैं वर्तमान में जीना। तो क्या मैं वर्तमान में होश में रहकर वर्तमान में जी रहा हूं? अगर जी रहा हूं तो मेरे पुण्य कर्म हो रहे हैं, और अगर नहीं तो पाप कर्म हो रहे हैं। जब आत्मा पहली बार धरती पर आती है तो झिलमिल झिलमिल करते आती है, देह में प्रवेश करती है। जब हम देह में प्रवेश करते हैं तो आत्मा और शरीर दो चीजें हो जाती है। तो पहले तो हम सृष्टि रंगमंच पर जब आए थे तो सत्युग में आए थे, तो कर्म वहां किए हमने कि नहीं किए? किए। तो कौन से कर्म किए थे? पुण्य कर्म किए थे, पाप कर्म किए थे? हाँ, पाप भी नहीं किए थे, पुण्य भी नहीं किए थे, तो क्या किए थे? क्या होता है कर्म का मतलब? देखो, बाबा कई बार कहते हैं सुनते हुए भी नहीं सुनो, देखते हुए भी नहीं देखो बोलते हैं, तो क्या मतलब होता है उसका? बच्चे कहते बाबा देख लेने के बाद नहीं देखना कैसे होता है? बोलते हैं नहीं बोलते हैं? देख लिया, आप नहीं देखो ऐसे कैसे हो सकता है? देख तो लिया ना, सुन लिया, भी नहीं सुनना कैसे होता है? हा? सेव नहीं करो, एंटर नहीं प्रेस करो, स्क्रीन पे है अभी सिर्फ, तो अगर सेव नहीं करेंगे, एंटर नहीं करेंगे तो मिट जाएगा अपने आप। लेकिन अगर सेव कर लिया, एंटर का बटन दबा दिया, तो अब वो हार्ड डिस्क में, मेमोरी चिप में चला गया। तो जब बाबा कहते हैं देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, का मतलब क्या है? क्योंकि हमारे पास मन है, जब तक बाबा के नहीं बने थे तो हम समझते थे यही सब कुछ है, जब बाबा के बने तो पता चला इसके अंदर एक चैतन्य शक्ति है, तो पता चला दो चीजें हैं, एक आत्मा है और एक शरीर है। लेकिन ज्ञान में जब थोड़ा और आगे बढ़े तो बोला इतना ही नहीं है, इन दोनों के बीच में एक सूक्ष्म शरीर भी है। ऐसे पता चलता है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो। ये सूक्ष्म शरीर क्या है? ये मन का प्रतीक है। अब मन कहाँ है? बीच में है। सूक्ष्म शरीर बीच में, यही बताते हैं ना, इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के अंदर भ्रुकुटी में आत्मा, यही बोलते हैं ना। तो सूक्ष्म शरीर हो गया बीच में। तो सूक्ष्म शरीर का एक हिस्सा आत्मा की तरफ और एक हिस्सा, क्लियर हो रही है बात? तो इंद्रियों के माध्यम से ही तो अंदर आती है बात। इस दुनिया में हम जी रहे हैं तो इंद्रियों के माध्यम से हम बाह्य दुनिया से कनेक्टेड हैं, और इंद्रियों के थ्रू वो मैसेजेस, वो इंफॉर्मेशन माइंड तक पहुंच रहा है। तो माइंड की स्क्रीन पे तो आ गया, माइंड की स्क्रीन पे तो आ गया, चाहे देखा चाहे सुना। पर अब बाबा कहते देखते हुए भी नहीं सुनो, देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, का मतलब क्या हुआ? ये मन है स्क्रीन, और इधर वाला हिस्सा वो क्या है? चित्त। दादी जान की इस शब्द को बहुत यूज करती थी, न मन में न चित्त में, कहती थी। तो मन क्या है और चित्त क्या है? मन है कॉन्शियस माइंड और चित्त है सबकॉन्शियस माइंड। मन है ऊपरी मन या बाह्य मन और चित्त है अंदर का मन। तो मन है स्क्रीन और चित्त है स्टोर हाउस। तो आपकी स्क्रीन पे आया है पर अभी उसको स्टोर हाउस में, हार्ड डिस्क में, मेमोरी चिप में नहीं जाने दो। और नहीं जाने दो मोना, अब उसका बार बार चिंतन नहीं करो, उसको वहीं पर कट कर दो। जिसको और सरल भाषा में अगर कहें, चाय पीते पीते साड़ी पर गिर गई चाय। चूंकि हमें नॉलेज है कि चाय का धब्बा साड़ी को खराब कर देगा, और अभी के अभी मैं निकालूंगी तो सेफ रह जाएगी, चाय वहीं पे छोड़ के हम उसको वहीं पे, क्योंकि अभी अभी ताजा ताजा है, साड़ी के तंतुओं ने अभी उसको एब्जॉर्ब नहीं किया, ये ऊपर ऊपर की लेयर पर है। और चूंकि अभी ऊपर ऊपर की लेयर पर है, अभी ही जाके मैं साफ करके आती हूं तो अंदर जाने की उसको मार्जिन नहीं है। लेकिन अगर मैं अभी थोड़ा सा भी अलबेलापन करती हूं, आलस्य करती हूं, तो धीरे धीरे तंतु जो है साड़ी के उसको अपने भीतर सोख लेंगे, और सोखने के बाद अब दाग नहीं छूटेगा। छूटेगा भी तो स्पेशल टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी, फिर अखबार पढ़ना पड़ेगा। चाय के धब्बे के लिए क्या यूज करना पड़ता है, है ना? अलग अलग धब्बे, अलग अलग टिप्स होती है ना उसकी। भाई फलाना है डाबर का लगा है तो केरोसिन लगा दो, इसका है तो नींबू लगा दो, ये है तो, अलग अलग टेक्निक्स होती है। तो ये है कि चित्त पे जाने नहीं देना है उसको, उस बात को वहीं पर क्या कर दो, रफो चक्कर कह दो। जिसको पहले के दिनों में लोग कहते थे रात गई और बात गई, और जिसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे दिन भर में जो कुछ भी हुआ है रात को सोने से पहले सब कुछ मुझे दे दो। क्योंकि अगर उसको नहीं दिया, रोज रोज उसको रिपीट करूंगा चित्त में गहराई से छप जाएगा। और अब न भी चाहूं, क्योंकि गहरा संस्कार का रूप बनते जा रहा है और बार बार पॉपअप होता है, बार बार पॉपअप होता है, निकल निकल कर आता है, जिसको ही तो कहते हैं चित्त वृत्ति। क्या है चित्त? चित्त में जो कुछ बैठ गया है, जो कुछ संचित हो गया है, उसमें से उछल कूद हो रही है। योग में बैठते हैं तो क्या होता है? अंदर जो भी चित्त में बैठा हुआ है उसकी उछल कूद चलती रहती है ना। कभी सुख भरे क्षणों की उछल कूद चलती है, कभी दुख भरे क्षणों की उछल कूद, कभी किसी ने मुझे मदद की उन बातों की उछल कूद चल रही है, कभी किसी ने मुझे धोखा दिया उन बातों की उछल कूद चल रही है। और उसी उछल कूद में रेड लाइट से व्हाइट लाइट हो गई, पता ही नहीं चला। करने बैठे थे योग, कौन सा योग करने बैठे थे? पावरफुल योग। ऐसा पावरफुल योग कि ऐसी योग अग्नि जले जो मेरे सारे विकर्म विनाश हो जाए। ऐसे बैठते हैं ना हम लोग। तो ये है पाप और पुण्य, क्लियर हुआ? यही उछल कूद करते हैं, लेकिन इस उछल कूद से हम मुक्त कैसे हो? क्योंकि एक कमरा है जहां बहुत कुछ रखा हुआ है, लेकिन घटाटोप अंधकार है, तो दिखाई कुछ भी नहीं देगा कि यहां कुछ रखा है। लेकिन प्रकाश की व्यवस्था कर देंगे तो सब कुछ दिखाई देने लगेगा, और जो जिस हालत में है वैसा ही दिखाई देगा। तो 63 वर्ष अज्ञानता का जीवन जिया, तो चित्त रूपी कमरे में अज्ञानता में बहुत गठरी जमा हो गई है अंधकार में, लेकिन ज्ञान की रोशनी बाबा ने दे दी। और उस रोशनी से भीतर जब योग करने बैठते हैं तो ये जो उछल कूद होती है तो पता चलता है अंदर ये सब कुछ है, अंदर में ये सब कुछ है, ये पता चलता है। परंतु उसे डरना नहीं है, परंतु उससे डरना नहीं है, क्योंकि घटाटोप अंधकार को सूर्य की रोशनी हटाने में कितनी देर लेती है? कितनी देर लेती है? ऐसे थोड़ी कि सालों का ये कमरा सालों से बंद है और इसलिए इसका अंधकार भगाने के लिए सालों तक रोशनी करनी पड़ेगी, ऐसा होता है कभी? ऐसा नहीं होता है। और इसी कारण से बाबा भी यही कहते हैं, सर्व आस्थान मुरली में सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो सब धर्मों को छोड़कर मेरी एक शरण में आ जा, मैं तुझे तेरे पापों से, सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। किस आधार पे इतनी बड़ी बात कि अज्ञानता वश किया है बच्चों ने जो कुछ किया है, अब एक ज्ञान की रोशनी। 63 जन्मों से समझ रहे थे ये मैं हूं, लेकिन पहला ही लेसन मिला, कन्विंस हो गए ना, सचमुच मैं ये नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसे थोड़ी 63 जन्म चाहिए मुझे इसको समझने के लिए। ज्ञान की रोशनी मिली, 63 जन्मों का अंधकार अज्ञान का तुरंत मिट गया, तुरंत मिट गया। अब क्या हो रहा है कि मुझे पता चला कि आत्मा ज्योति स्वरूप है, बहुत शुद्ध ऊर्जा है, शुद्ध प्रकाश है, परंतु शिकायत है कि उतना शुद्ध स्वरूप, उतना उजला स्वरूप, उतना प्रकाशमान स्वरूप दिखता नहीं है। और उसका कारण क्या है कि जैसे कहा कि कमरे में बहुत सारी चीजें रखी हुई है और लाइट की गई, तो लाइट की जो शुभ्रता है वो उतनी नहीं दिखाई देगी जितनी की वो है। क्यों? क्योंकि उस लाइट का प्रकाश वहां रखी हुई वस्तुओं पर पड़ रहा है। वस्तु तो पहले भी थी पर दिख नहीं रही थी। क्यों? कोई चीज मुझे दिखे उसके लिए उस पर प्रकाश का होना जरूरी है। तो प्रकाश है तो दिखना, लेकिन वो वस्तु पर जो प्रकाश पड़ रहा है फिर उसका शेडो भी तो बन रहा है, उसका शेडो भी तो बन रहा है, और वो शेडो उस लाइट की जो उज्ज्वलता है, शुभ्रता है, उस उतनी मात्रा की शुभ्रता को मुझे देखने से रोक देता है। तो लाइट की शुभ्रता जितनी है, उज्ज्वलता जितनी है, उसका निखार जितना है, उसकी पवित्रता जितनी है, उसी इंटेंसिटी में मुझे वो लाइट दिखे उसके लिए कमरा पूरा खाली होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? क्योंकि फिर शेडो नहीं बनेगा ना किसी चीज का, और जब शेडो ही नहीं बनेगा तो उसकी उज्ज्वलता दिखाई पड़ेगी। लेकिन उन चीजों से परे कैसे, वो परे कैसे करें अब? तो हम देखते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है कितनी दूर तक है, वो कितनी दूर तक है? कुछ लिमिटेड एरिया तक है ना, तभी तो विमान चल रहे हैं। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बहुत बहुत लिमिटलेस दूरी तक हो, विमान चल नहीं सकते। कौन सा नियम होता है विमान चलाने के लिए? क्योंकि विमान को गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अपोजिट में भेज रहे हैं हम, तो उतना ही उससे ज्यादा पावर देकर उसे ऊपर उठाना होता है। और अगर ऊपर कोई ऐसा एरिया ही नहीं हो कि जहां गुरुत्वाकर्षण खत्म ना हो, तो लगातार आपको इतना सारा पावर देना पड़ेगा। कैसे दे सकोगे इतना? नहीं हो सकता है पॉसिबल। तो कुछ एक कहते 200 मीलों दूरी तक ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती है, उसके बाद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। तो उतनी दूरी तक विमान को उतना ज्यादा पावर दी जाती है, और एक बार उस एरिया को वो क्रॉस कर लेता है फिर उसको इतनी पावर की जरूरत नहीं होती है। ठीक ऐसे ही हमें भी इतनी पावर अपने आप को देनी होगी कि ये दुनिया में रहते हुए 5 इंद्रियों के माध्यम से इधर अंदर में जो जमा किया है उसके आकर्षण से मैं ऊपर उठ जाऊं, तब कहीं जाकर मेरा शुभ्र पवित्र प्रकाश स्वरूप जैसा है वैसा दिखाई पड़ेगा। और उसी के लिए ये अंतर जगत की यात्रा, ये भीतर जाने की यात्रा, ये एकांत के पल, भीतर 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 जाओ। क्योंकि बाहर जब बहुत रोशनी होती है ना, आप बहुत सूर्य की रोशनी से अंदर कमरे में आओ, अंधकार लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमारी आंखें आंखों की सेटिंग होती है और आंखें एक बार सेट हो जाती है अब अंधकार नहीं लगता है। ठीक ऐसे ही जब हमें एकांत के पल दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि भीतर की यात्रा करो तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। बहन जी कहती है कोई कमेंट्री नहीं चलेगी, बस बैठ जाओ एकांत में। अंदर जाते हैं तो समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे कहा आंखों को सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार सेट हो जाता है तो दिखता है नहीं दिखता है। और इसीलिए तो तीन तीन दिन का टाइम जीवन में मौन को स्थान दो। भीतर कुछ ना भी दिखे तो भी उस यात्रा की ओर बढ़ते रहो। ऐसा ही तो करते ना, बहुत तेज रोशनी से कमरे में आते, कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत ज्यादा रोशनी से आई हूं ना मैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। थोड़ी देर में आंखें सेट हो जाएंगी, सब कुछ ठीक। ऐसा ही विश्वास मुझे इस भीतर की यात्रा की तरफ का हो, क्योंकि बाह्य दुनिया की चकाचौंध में लगे हुए हैं। देखना, सुनना, खाना, बोलना, स्पर्श करना, यही बातें दिमाग में घूम रही है, और वहां से हटाकर कहा बैठ जाओ एकांत में, चले जाओ अंदर में। तो पहले तो डिफिकल्टी होती है, लेकिन दृढ़ता के साथ, तो भीतर की आंख भी थोड़ा सा टाइम लेती है सेट होने में, और एक बार भीतर की आंख भी भीतर की दुनिया में जब सेट होना शुरू करती है, हम आकर्षणों से परे होना शुरू करते हैं। और उस आकर्षणों से परे होते हैं तो अपना सत्य स्वरूप, उजला स्वरूप दिखने लगता है। और कल जो प्रश्न आया था, किसी ने किया था, जो कॉन्ट्रेडिक्टरी बात लिखी हुई थी, जो मैंने कहा था कि मैंने तो ऐसे नहीं पढ़ा है, कि क्या बाबा कहते हैं विकर्म विनाश करने के लिए योग करो, और दूसरी बात क्या कही कि जब विकर्म विनाश हो जाएंगे तब योग लगेगा, पर ऐसे बाबा ने कभी नहीं कहा। ये जब विकर्मों के आकर्षण से परे हो जाओगे, जब विकर्मों के आकर्षण से जब परे हो जाओगे, जैसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति वाले एरिया से को जब पार कर जाओगे, तो विमान अब बिना ज्यादा पावर के भी मस्त चल रहा है। तो थोड़ा समय लगेगा ना, फोर्स चाहिए उसके लिए, तो थोड़ा समय लगता है। तो क्या लगा आपको, ऐसे ही बिठा दिया गया हमको, लगा ऐसा नहीं। और यहां से पाठ पक्का करके जाओ, मौन का, भीतर की यात्रा का, भले वही वाले आकर्षण अंदर दिख रहे हो, परंतु आंख को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और भीतर वो उजला प्रकाश दिखेगा, और तब परम धाम में इजी एंट्रेंस होगा। जो पोस्ट क्वेश्चन था कि जब तुम साफ होगे तब तुम्हारा योग होगा, लेकिन साफ किस अर्थ में, समझ में आ रहा है अभी आपको, साफ किस अर्थ में कि आपकी स्मृति अब उस शुभ्र, उस पवित्र अपने स्वरूप पर टिक गई है। अभी तक कोशिश चल रही है, वही वही बातें आ रही हैं, तो स्मृति मेरी अपने स्वरूप पर अभी टिकी ही नहीं है, तो वास्तव में मैं देही अभिमानी बनी ही नहीं हूं, या यूं कहें कि 100% देही अभिमानी नहीं बनी हूं। तो बात है 100% देही अभिमानी स्थिति होगी मेरी, इसीलिए एंट्रेंस होगी परम धाम में, माना ऐसा धाम जहां कोई आकर्षण खींचेगा नहीं, ऐसा धाम जहां समय है वहां पे, समय ही नहीं है, कोई दिन रात ही नहीं है वहां पे, वहां वाणी है आवाज ही नहीं है, कि वहां इतनी इजी एंट्रेंस होगी और हम वो स्थिति को मेंटेन करेंगे, निर्वाण स्थिति। और निर्वाण स्थिति माना क्या, निर्वाण स्थिति माना क्या, वाणी से परे और कुछ। बाबा कहते हैं जब आप परमधाम में होंगे, आपको पता होगा कि मैं बाबा के पास में हूं, पता होगा। तो वाणी से परे का मतलब सिर्फ ये वाणी नहीं, मन भी जो विचारों के रूप में वाणी करता है ना, मन भी तो विचारों के रूप में वाणी ही करता है ना, नादी तो आता है ना। हम चुपचाप बैठे हैं, बाहर से कुछ भी नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर क्या कहते हैं, बहुत शोरगुल है। किसका शोरगुल है, विचार की वाणी का। तो जब कहा निर्वाण धाम में एंट्री होगी, अर्थात मन के विचार भी थम जाएंगे, और इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, क्योंकि हम लोगों को अभ्यास है ना कमेंट्रियों के द्वारा योग करने का, अच्छी बात है। लेकिन हम यहाँ पर जिस बात पर जोर डालने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है, कुछ समय के लिए निर्वाण स्थिति का अनुभव करना है, जहाँ मन भी थम जाए। जैसे घड़ियां होती है ना पेंडुलम की, तो पेंडुलम की दो एक्सट्रीमिटीज होती है, दाई ओर मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड। उसका एक्सट्रीम होता है कि राइट साइड में जा रहा है तो इतनी एक्सट्रीम तक जाएगा फिर लौटेगा, फिर लेफ्ट साइड भी जाएगा तो इतनी एक्सट्रीम तक जाएगा फिर लौट कर आएगा, तो ये चलता रहता है। लेकिन अगर पेंडुलम बीचों बीच की अवस्था में खड़ा हो जाए तो घड़ी समय बताएगी, तो वो परमधाम क्या है, समय तो वहां है ही नहीं ना, तो जरूरत है क्या कि घड़ी समय दिखावे, जरूरत है क्या वहां घड़ी समय दिखाए। तो रुकने दो ना पेंडुलम को, रुकने दो ना पेंडुलम को, जहां समय ही नहीं है तो क्यों मैं भागम भागी कर रही हूं इधर 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 इधर। समझ में आ रही है बात, जिसको ही लौकिक में भक्ति मार्ग में निर्विकल्प समाधि कहा। एक कहते हैं सविकल्प समाधि और दूसरी कहते हैं निर्विकल्प समाधि। विकल्प माना, विकल्प माना हाँ थॉट्स। आप देखो जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता है, तो क्या कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं ऑप्शन, हिंदी में कहते हैं विकल्प। इस प्रश्न के लिए आपको चार विकल्प है, राइट वाला सिलेक्ट कीजिए, चार ऑप्शन है। तो विकल्प का हमेशा अर्थ निगेटिव नहीं है। तो जब कहा सविकल्प समाधि, अर्थात अभी ऐसी स्थिति में हो जहां ऑप्शंस तो उठ रहे हैं, हाँ मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं ये हूं, ऑप्शंस उठ रहे हैं। लेकिन निर्विकल्प माना ऑप्शंस भी उठने बंद हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व प्रकाश मां। इसलिए तो देखो परमधाम में क्या है, दूर दूर तक हम क्या कहते हैं, गोल्डन रेड लाइट, दूर दूर तक शांति, दूर दूर तक प्रकाश ही प्रकाश, यही कहते हैं। तो सिर्फ उस प्रकाश में खो जाओ, कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, उसमें थम जाओ। और जब मैं उसमें थम जाती हूं, तब वो जो परम पवित्र प्रकाश है वो मेरे ऊपर काम करना शुरू करता है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अपनी फ्रीक्वेंसी पर मेरे को सेट कर देता है, और मेरे को सेट करता है अर्थात मेरी शुद्धतम अवस्था में मुझे पहुंचा देता है, मुझे आप समान बाप समान बना देता है। और दुनिया के अंदर इस बात को विज्ञान की रीति से भी कहते हैं लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी, जिसमें वो बताते हैं कि दो घड़ियां एक दीवार पर लगी हुई थी और एक वैज्ञानिक को उस कमरे में ठहराया गया था। उसने देखा दोनों घड़ी, बहुत पुरानी बात है तो पेंडुलम वाली घड़ियां थी, तो दोनों घड़ियों के मिनट काटा, सेकेंड काटा, आवर काटा, पोजीशन सेम, पेंडुलम की पोजीशन भी सेम। उसको लगा ऐसे कैसे, थोड़ा तो अंतर होना चाहिए ना। तो उसने क्या किया, रात को पर्पसली जानबूझकर, वो दोनों घड़ियां बड़ी थी पर कंपैरेटिवली एक छोटी थी, समझ में आ गया, दोनों घड़ियां बड़ी ही थी पर कंपैरेटिवली एक दूसरे से छोटी थी, छोटे वाले को स्टॉप किया और छोटे वाले को स्टॉप करके सो गया। डेफिनेटली सुबह जब उठेगा तो टाइम डिफरेंस दिखेगा, टाइम डिफरेंस दिखा, अब पर्पसली खुद होकर फिर से टाइम सेट किया चालू करने के लिए, पर पर्पसली कुछ अंतर रखा ये देखने के लिए कि क्या ये वापस सेम टाइम पे आ जाएगी। और सचमुच उसने देखा 24 घंटे के अंदर अंदर फिर से दोनों घड़ियां एक जैसा टाइम दिखा रही है, एक जैसा। और उसने सोचा कि अगर ऐसा हुआ है मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं है, सब लॉजिक इज वर्किंग बिहाइंड इट। और उसको भी उसने स्टडी करके पता किया, और क्या पता किया, रात के एकांत में वो जो दो घड़ियां हैं उनमें से एक बड़ी है दीवार पर उस पे जाता कान लगाता और महसूस किया कि इस बड़ी वाले घड़ी की टिक 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 के जो प्रकंपन है, जो वाइब्रेशन है, वो दीवार को होते हुए दूसरी वाली घड़ी के पास जाते हैं और वो प्रकंपन इसको सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। और उसी के रिजल्ट है कि दोनों कुछ समय के बाद एक ही टाइम दर्शा रहे हैं। और बाबा भी इसलिए यही कहता है, मेरे परम धाम में आके बैठो, मेरे पास आके बैठो, कुछ नहीं करो, बस मेरे समीप आकर बैठ जाओ, सिर्फ अपने प्रकाश स्वरूप में हूं मैं। और बाबा भी अपने प्रकाश स्वरूप में, बस खो गई मैं। अब बाबा की फ्रिक्वेंसी सिंक्रोनाइज करेगी मेरे को बाबा जैसे स्थिति में लाने के लिए। तो किया ऐसा अनुभव, तो ऐसा करना है। है। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है बाबा का ज्ञान, बहुत सिंपल है, परंतु शायद हम पूरी समझ नहीं होने के कारण हम सिर्फ डाउट्स में रह जाते, क्या ऐसा इसको योग बोलेंगे क्या, है ना? कभी कभी ऐसा लगता है ना, कभी कभी नहीं तुम विचारे नहीं तो तुम कर क्या रहे थे फिर, तो कभी कभी लगता है बस बातें ही करते रहो। बातें डेफिनेटली करो, पर इतनी तल्लीन होके कर लो कि उस तल्लीनता में आवाज भी थक जाए, विचार भी थक जाए, और तब जाके बाबा सिंक्रोनाइज करेगा और हम बाप समान बन जाएंगे। लेकिन पहले महसूस था, हाँ है, कमरे में लाइट किया तो है, इतना कचरा है, है ना अंदर बहुत कुछ, लेकिन साक्षी होकर देख रहे हैं, ये तो अज्ञानता में किया ना, इसलिए जमा हो गया, अब तो ज्ञान आया ना मेरे पास कि मैं कौन हूं, तो उस पर मुझे ध्यान देना है। तो आंखें सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर लगे रहो और सफलता अवश्य मिलेगी। और सचमुच उसी को कहते हैं योग अग्नि। योग अग्नि मतलब वैसे कोई अग्नि नहीं जलेगी, पर ज्ञान ने अज्ञान का पर्दा उठा लिया, और अज्ञान का पर्दा उठते ही मैं अपने शुद्धतम स्वरूप में टिकना आरंभ की, और उसी शुद्धतम स्वरूप में उसके पास जाके बैठी, उसने आगे का काम किया और मेरे चित्त पर इतना सारा जो जमा हुआ कचरा था साफ कर डाला, और मैं एकदम साफ और स्वच्छ हो गई। तो मैं समझती हूँ कल वाला जो क्वेश्चन था क्लियर हुआ उसका, तो पाप की गठरी कैसे उतरती है वो भी समझ में आ गया, पुण्य की पूंजी कैसे जमा करना है वो भी समझ में आ गया, और कैसे पाप और पुण्य से उपराम पेंडुलम बीच में ही खड़ा हो जाए, नहीं चाहिए समय, वहां समय है ही नहीं ना। तो सचमुच बहुत कम समय में हम बहुत ज्यादा गलत कर सकते हैं और बाप समान संपूर्ण और संपन्न स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। Thank you.